अध्याय 27। रोम के लिए प्रस्थान।
मेरे मसीहा, मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा।
जब ये निश्चित हुआ कि हम लोग जलमार्ग से इटली जाएंगे, तो पौलुस और कुछ अन्य बंदियों को ओगुस्ता पलटन के यूलियस नामक शतपति के हवाले कर दिया गया। हमें एशिया के बंदरगाहों को जाने वाले अद्रामुत्तियुम के एक जहाज पर सवार होकर रवाना हो गए। थेसलनीके का अरिस्तार्खुस नामक मकेदूनी हमारे साथ था। दूसरे दिन हम सीदोन पहुंचे। यूलियस पौलुस के साथ अच्छा व्यवहार करता था, इसलिए उसने पौलुस को मित्रों से मिलने तथा उनका सेवा सत्कार ग्रहण करने की अनुमति दी। हम वहां से कुप्रुस के किनारे किनारे होकर चले, क्योंकि हवा प्रतिकूल थी। इसके बाद हम किलिकिया तथा पंफूलिया के तटवर्ती सागर से होकर लुकिया के मुरा नामक नगर पहुंचे। वहां शतपति को सिकंदरिया का एक जहाज मिला जो इटली जाने वाला था, और उसने हमको उस पर चढ़ा दिया। हम कई दिनों तक धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कठिनाई से कनिदुस पहुंचे। हवा प्रतिकूल थी, इसलिए हम सलमोने के सामने से गुजरकर क्रेत के दक्षिण में किनारे किनारे चलते हुए कठिनाई से लसैया नगर के निकट सुंदर बंदरगाह नामक जगह पहुंचे। पौलुस के परामर्श की उपेक्षा। बहुत समय निकल चुका था और समुद्री यात्रा अब खतरनाक हो गई थी। उपवास का दिन भी बीत चुका था, इसलिए पौलुस ने उन लोगों को यह कहते हुए सावधान किया, सज्जनों, मुझे लग रहा है कि ये यात्रा संकटमय होगी। हमें न केवल माल और जहाज की हानि उठानी पड़ेगी, बल्कि अपने प्राणों की भी। किंतु शतपति को पौलुस की बातों की अपेक्षा कप्तान और जहाज के मालिक पर अधिक विश्वास था। वो बंदरगाह जाड़ा बिताने के लिए बहुत उपयुक्त भी नहीं था, इसलिए अधिकांश लोग वहां से चल देने के पक्ष में थे। उन्हें किसी न किसी तरह फेनिक्स तक पहुंचने और वहां जाड़ा बिताने की आशा थी। फेनिक्स क्रेत का बंदरगाह है, जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर खुला हुआ है। तूफान। जब एक मंद दक्षिणी हवा बहने लगी तो वे समझे कि हमारा काम बन गया है, और लंगर उठाकर क्रेत के किनारे किनारे आगे बढ़े। परंतु शीघ्र ही स्थल की ओर से उत्तर पूर्वी नामक तूफानी हवा बहने लगी। जहाज तूफान की चपेट में आकर हवा का सामना करने में असमर्थ हो गया, इसलिए हम विवश होकर बहते चले जा रहे थे। कौदा नामक छोटे टापू की आड़ में पहुंचकर हम किसी तरह जहाज की डोंगी पर नियंत्रण कर पाए। उन्होंने उसे ऊपर खींचा और जहाज को नीचे से लेकर ऊपर तक रस्सों से कसकर बांध दिया। सुरतीस के उथले जल में फंस जाने के भय से उन्होंने पाल उतारकर जहाज को धारा के साथ बहने दिया। दूसरे दिन तूफान हमें जोरों से झकझोरता रहा, इसलिए वे जहाज का माल समुद्र में फेंकने लगे, और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का साज सामान भी फेंक दिया। जब कई दिन तक न तो सूरज दिखाई पड़ा और न तारे ही, और तूफानी हवा बहती रही, तो हमारे बच जाने की आशा भी समाप्त हो गई। वे बहुत समय से कुछ भी नहीं खा रहे थे, इसलिए पौलुस ने उनके बीच खड़ा होकर कहा,
सज्जनों, आप लोगों को मेरी बात मानकर क्रेत से प्रस्थान नहीं करना चाहिए था, तब आपको यह संकट और यह हानि नहीं सहनी पड़ती। अब भी मैं आप लोगों से ढाढ़स बनाए रखने का अनुरोध करता हूं। आप में से किसी का जीवन नहीं बल्कि जहाज नष्ट होगा, क्योंकि मैं जिस ईश्वर का सेवक तथा उपासक हूं उसका दूत आज रात मुझे दिखाई पड़ा और उसने मुझसे कहा, पौलुस, डरिए नहीं, आपको कैसर के सामने उपस्थित होना है, इसलिए ईश्वर ने आपको यह वरदान दिया है कि आपके साथ यात्रा करने वाले सब के सब बच जाएंगे। इसलिए सज्जनों, ढाढ़स बनाए रखिए, मुझे ईश्वर पर विश्वास है कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। यद्यपि हमारा जहाज अवश्य ही किसी टापू से टकरा कर टूट जाएगा।
पोत भंग। तूफान की 14वीं रात आई और हम अब तक अद्रिया समुद्र पर इधर उधर बह रहे थे। लगभग आधी रात को मल्लाहों को अनुभव होने लगा कि हम स्थल के निकट पहुंच रहे हैं। उन्होंने थाह लेकर 20 पुरसा जल पाया और थोड़ा आगे बढ़ने पर फिर थाह लेकर 15 पुरसा पाया। उन्हें भय था कि कहीं हम चट्टानों से न टकरा जाएं, इसलिए वे दुम्बाल से 4 लंगर लटकाकर उत्सुकता से भोर की प्रतीक्षा करने लगे। मल्लाह जहाज से भागना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने गलही से लंगर डालने के बहाने डोंगी पानी में उतार दी। इस पर पौलुस ने शतपति और सैनिकों से कहा, यदि ये जहाज पर नहीं रहेंगे तो आप लोग बच नहीं सकते। इस पर सैनिकों ने डोंगी के रस से काट कर उसे समुद्र में छोड़ दिया। जब पौ फटने लगी तो पौलुस ने सबसे अनुरोध किया कि वे भोजन करें। उसने कहा, आप लोगों को चिंता करते करते और निराहार रहते 14 दिन हो गए हैं, आप लोगों ने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए मैं आप लोगों से भोजन करने का अनुरोध करता हूं, इसी में आपका कल्याण है। आप लोगों में किसी का बाल भी बांका नहीं होगा। पौलुस ने यह कहकर रोटी ली, सबों के सामने ईश्वर को धन्यवाद दिया और वो उसे तोड़कर खाने लगा। तब सबकी जान में जान आई और उन्होंने भी खाना खाया। जहाज में हम कुल मिलाकर 276 प्राणी थे। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो वे अनाज समुद्र में फेंक फेंक जहाज हल्का करने लगे। दिन निकलने पर वे उस देश को नहीं पहचान सके, किंतु एक समतल बालू तट वाली खाड़ी देखकर वे परामर्श करने लगे कि यदि हो सके तो जहाज को उसी तट पर लगा दिया जाए। इसलिए उन्होंने लंगर काटकर समुद्र में छोड़ दिए, साथ ही पतवारों की रस्सियां खोल दी और अगला पाल हवा में तानकर तट की ओर चले। वे रेती से जा लगे और जहाज उसमें अटक गया। कल ही भूमि से टकराकर उसमें गड़ गई और दुम्बाल लहरों के थपेड़ों से टूट गया। कहीं ऐसा ना हो कि बंदी तैरते हुए भाग जाए, इसलिए सैनिक उन्हें मार डालना चाहते थे, किंतु शतपति ने पौलुस को बचाने के विचार से उन्हें रोका और आदेश दिया कि जो तैर सकते हैं वे पहले समुद्र में कूदकर तट पर चलें और शेष लोग तख्तों या जहाज की दूसरी चीजों के सहारे पीछे आ जाएं। इस प्रकार सब के सब सकुशल तट पर पहुंच गए।